संगत जी, प्रेम से कहना, साधु महापुरुष लारा प्रेम तो चवंडी और सारे साउथ जोन का समागम है, इसलिए प्रीत दहेरी अनमोल सुलंग स्नेह तोड़ पड़ो। तो साध संगत, ये चार सदरन स्टेट्स का समागम आंध्र प्रदेश में हो रहा है, हैदराबाद का ये नगर और इस एग्जीबिशन ग्राउंड में, यूँ तो इस एग्जीबिशन ग्राउंड में शायद 8-10 दफ़ा आने के मौके मिले हैं, 70s में भी, 80s में भी, 90s में भी, क्योंकि मुंबई समागम के बाद अक्सर यही रूट हुआ करता था, इधर से साउथ से होते हुए उड़ीसा और बंगाल का समागम अटेंड करने जब जाते थे तो कई बरस यही फिक्स्ड रूट बना हुआ था। और जब भी यहाँ हैदराबाद आते थे तो यहाँ एग्जीबिशन लगी होती थी, जहाँ पर डिफरेंट स्टेट से लोग अपने प्रोडक्ट्स यहाँ डिस्प्ले करते हैं, सेल करते हैं। तो आज उन्हीं मैदानों में एक ऐसा सुंदर रूप आप सभी महापुरुषों ने, भक्तों ने, स्थान स्थान से जो चल कर आए हैं, ये रूप आपने बनाया है, जहाँ पर श्रद्धा प्रेम भक्ति भाव से युक्त होकर जो मानवता का संदेश पैगाम, एकत्व का, वननेस का ये पैगाम ये चारों तरफ जो फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ भी कल से इन्हीं मैदानों में ये एक आवाज़ गूंज रही है कि हम एक बने, एकता के सूत्र में बंधे, तोड़ दें सारी नफ़रतों की दीवारें, प्यार का जहान बसाएं। इस प्रकार से ये थोड़ी सी ज़िंदगी मालिक ने हमें बख्शी है, जो एक सांस अमोलक मालिक ने बख्शे हैं, ये एक यूं ही वैर ईर्ष्या नफ़रत करते हुए, लूट मार करते हुए, हर्षो हवस से युक्त होकर, प्रलोभनों में पढ़कर, इंसानियत का दामन छोड़कर, हैवानियत और शैतानियत की भावना से युक्त होकर इन सांसों को जो बिता रहे हैं, एहसास करें कि ये बहुत अमोलक सांस मालिक ने बख्शे हैं। एक एक सांस की कीमत है, ये यूं ही गंवाने लायक नहीं है, ये पूरे पूरे हमारा पूरे का पूरा जीवन ये किसी एक मकसद के लिए है। एक पहले तो जन्म पाना एक ऐसे मकसद के लिए, अपनी आत्मा का नाता परमात्मा से जोड़ने के लिए, और बाकी जितनी भी उम्र हम बिताते हैं, ये सफ़र तय करते हैं, वो एक मानवीय चाल चलते हुए, इंसानी चाल चलते हुए, और इस प्रकार से हम अपने श्वासों की कीमत डालें। इंसान इसकी कीमत नहीं डाल रहे हैं, इसीलिए इंसानों की चाल एक बहकी हुई चाल है। तो यहाँ पर कल से ही महापुरुषों की वाणी यही एक पुकार पुकार कर ये एहसास करा रही है कि हमने इस मालिक प्रभु परमात्मा, इस निराकार अकाल पुरख के साथ अपना नाता जोड़कर, इन्हीं दिव्य गुणों से युक्त होकर इस सफ़र को हमने इंसानी चाल चलते हुए हमने ये तय करना है। इंसान तो करने को तो कहते हैं, हम इबादत भी कर रहे हैं, कोई कहता हम बंदगी कर रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, हम यात्राएं भी कर रहे हैं, हम स्नान जप तप भी कर रहे हैं, बहुत बहुत ऐसे कार्य क्रियाएं ये इंसान करता है, लेकिन इसकी फितरत, इसकी प्रवृत्ति, इसका व्यवहारिक पहलू, इसके ख्याल, इसकी सोच ये कुछ और बता रही होती है। ये लगातार ये दोनों एक अवस्थाएं, एक विपरीत अवस्था ये वाकई संसार में रही है, इसीलिए ये प्रभु के नगमे भी गाता है और दूसरी तरफ ये गिरावट की ओर भी जाता है। जैसे वो शायर का शेर भी एक आध दफ़ा दास ने उसका ज़िक्र किया कि सजदा मालिक को और इबलीस से याराना भी, हश्र में किससे अकीदत का सिला मांगेगा। कि एक तरफ तू सजदा कर रहा है मालिक खालिक को और दूसरी तरफ इबलीस से याराना भी। इबलीस यानी कि वही फरिश्ता जिसने मालिक के हुक्म को नहीं माना। जब मालिक ने कहा कि मैंने ये वजूद बनाया है इसको सजदा कर, और वो मुनकिर हो गया, कहने लगा नहीं मैं नहीं करूँगा, हमें आतिश से बनाया, इन्हें खाक से बनाया, और मैं इसके सामने सजदा करूँ ये मुझे गवारा नहीं है। और इसीलिए उसी इबलीस के बारे में कहा गया है तो फरिश्ता था पहले, लेकिन उसमें भी ये भाव अहम का, अभिमान का जाग गया और उसको आज किस श्रेणी में गिना जा रहा है कि हजर गया इबलीस मारा एक सजदे के ना करने से, हज़ारों वर्ष सजदे में सर मारा तो क्या मारा। इस प्रकार से एक इबलीस से याराना भी, दूसरी तरफ सजदा मालिक को भी। तो महापुरुष कहते हैं कि अगर वाकई ही तू प्रभु में आस्था रखता है, अगर वाकई ही तू अपने आप को भक्त और अकीदे वाला मानता है, तो फिर तू क्यों वो राह अख्तियार करता है जो शैतानों वाली है? क्यों वो तू डिस्ट्रक्शन में बिलीव करता है? क्यों तू लूटमार करता है? प्रभु परमात्मा ईश्वर हमेशा ही एक उस रास्ते पे चलाने के प्रयास जो गुरु पीर पैगंबरों ने किए वो बनाने वाले हैं, बिगाड़ने वाले नहीं, वो बसाने वाले हैं, उजाड़ने वाले नहीं। जो उजाड़ने में यकीन रखते हैं वो शैतानी फितरत वाले होते हैं। जैसे वो भी कहावत है कि डेविल बिलीव्स इन डिस्ट्रक्शन एंड गॉड बिलीव्स इन रिस्ट्रक्शन। तो इस प्रकार से एक जो डेविलिश, जो ऐसी प्रवृत्तियाँ होती हैं, शैतानी फितरतें होती हैं, वो तो हमेशा ही बिगाड़ने में यकीन रखते हैं और वो बिगाड़ कर खुशी महसूस करते हैं, मासूम जाने लेकर जश्न मनाते हैं, वो दूसरों की चिताओं पर अपनी रोटियां सेकते हैं। ये एक शैतानी फितरत है, ये कोई धार्मिक या इबादत वालों की फितरत नहीं है। आवरण कोई भी ओढ़ लिया जा सकता है, पहरावा कोई भी पहन लिया जा सकता है, सजदे किसी एक दिशा की तरफ या कोई और पद्धतियों को अपनाकर ये भक्ति की जा सकती है। एक आरती की थाली लेकर उसको घुमाया जा सकता है, विशेष प्रकार के वस्त्र पहने जा सकते हैं, एक माला हाथ में ली जा सकती है, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें क्या दिक्कत है? बहुत सरल, बहुत आसान है। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि ये सब कुछ तू कर रहा है, माला तो कर मैं फिरे, जीभ मुखे फिरे मुख माहे, मनवा तो दिस फिरे ये तो सुमरन नाहे, क्यों पानी में मलमल नहाए, मन की मैल गंवारे बंदे। यानी कि ये बाहर के सिलसिले कि कर का मन का डार दे और मन का फेर, कि ये मन का तो फेरा नहीं और हाथ में माला के मणके तो तेरे घूम रहे हैं बखूबी, तो ये तेरे भक्त होने की पहचान नहीं है। ये तो उस वास्तविकता में अगर तू उस भाव से युक्त होकर जीवन के सफर को तय करेगा, अगर इधर माला फेर रहा है और उधर दूसरे का बुरा कर रहा है, इधर तू महापुरुषों की वाणी पढ़ रहा है उधर तेरे कड़वे बोल खत्म होने में नहीं आ रहे हैं, एक का दिल दुखाना फिर दूसरे का दुखाना फिर तीसरे का दुखाना, एक जख्म पे जख्म दिए चले जा रहा है, एक नारे बुलंद करके जिंदा जला रहा है, मासूमों की जाने ले रहा है, तो ये कैसा खिलवाड़, ये कैसी खुशफहमी में तू जी रहा है कि शायद फिर भी तू एक संत महात्मा भक्त और तू हरि की दरगाह में, तू इस परमात्मा अल्लाह की दरगाह में तुझे एक पक्का स्थान मिल गया है। ये तेरी अपनी पैदा की हुई खुशफहमी है जो गलत फहमी पे आधारित है। यूं ही तो अपने मन में खुश हो रहा है, तसल्ली किए दिए जा रहा है अपने आप को, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये तो कसौटी है। कसौटी ने केवल ये देखना है कि सोना है या सोना नहीं है। कसौटी के सामने कोई दलीलें चलने वाली नहीं हैं। कसौटी ने तो सीधा साबित कर देना है। उसके ऊपर रगड़ोगे अगर सोना है तो कीमत पड़ जाएगी, और अगर सोना नहीं है, केवल ऊपर रंग चढ़ाया हुआ है और अंदर कुछ और धातु है, तो वो भी कसौटी ने सामने ले आना है। तो इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि कबीर कसौटी राम की, झूठा टिके ना कोए, राम कसौटी सो सहे जो मर्जीवा होए। कि इस कसौटी के ऊपर, इस मालिक रूपी कसौटी, इस राम रूपी कसौटी, इस अल्लाह रूपी कसौटी, इस गॉड रूपी कसौटी, इस अकाल पुरख निराकार रूपी कसौटी के ऊपर झूठा टिके न कोए। इसके ऊपर कोई झूठ टिक नहीं सकता है, क्योंकि इससे सबकी हालत अयां है। ये मालिक से क्या पर्दा इंसान, ये सब जानता है। कबीर जी ने भी कहा कि लोग प्रचारा करे दिन रात, कि लोगों को परचाने के लिए तो भक्ति कर रहा है, ये सब क्रियाएं कर रहा है, और लोगन राम खिलौना जाना। ये कबीर जी की वाणी कहते हैं कि ये समझते हैं कि ये मालिक खिलौना है, इसको हम भरमा लेंगे। हम चाहे इधर हम स्नान कर लें, उधर दूसरे को हम जिंदा डुबोने में भी पीछे नहीं हटते हैं, और मालिक खुश हो जाएगा। मालिक को हमने अपनी तरफ कर लिया है, एक जन्नत नसीब हो जाएगी, वही हश्र का दिन, कि उसमें हमारे एक पूरी तरह से हम सुरखरू हो जाएंगे, दोजख की आग में नहीं जलेंगे। इस प्रकार से इंसान ये सोच कर चलता है। लेकिन कब का महापुरुषों ने इंसान के सामने ये फैसला दिया हुआ है। ये फैसले तमाम रखे हुए हैं, लेकिन इंसान की जैसे ये फितरत रही है, इंसान की ऐसी सोच रही है, इंसान के ऐसे भाव रहे हैं, उसी पे आधारित इंसान अपने जन्म को यूं ही गंवाते चले जाते हैं। जीवन का कोई मकसद, असल मकसद पूरा नहीं करते हैं, जीवन को उन ऊंचाइयों तक नहीं ले जाते हैं। एक गिरावट वाले ही कदम ये उठाते रहते हैं, और मंजिल पे तो क्या पहुंचना है, ये मंजिल से और दूर होते चले जाते हैं। ये बोझ क्या उतारने हैं जन्मों जन्मों के, बल्कि इस जन्म में भी और बोझ इकट्ठे कर जाते हैं। इन जंजीरों से छुटकारा तो क्या पाना है, और ज़्यादा जंजीरें अपने पाँव में लपेट लेते हैं। आत्मा को भी भुगतान करना पड़ता है, फिर वही आत्मा आवागमन के बंधन में पड़ी रहती है। जम जम मरे मरे फुन जमे, बहुत सजाए प्या देश लम्बे। तो वाकई ही इस प्रकार से ये बोझ नहीं उतारता, उल्टा और इकट्ठे कर लेता है, और ज़्यादा भ्रमों का अंधकार बढ़ा लेता है, और ज़्यादा देनदारी अपनी बढ़ा लेता है। ऐसी नादानी ये इंसान करते आए हैं। ये एक जनरेशन की बात नहीं है, कि शायद एक जनरेशन की बात है। जनरेशन टू जनरेशन दिस इग्नोरेंस ऑफ डार्कनेस हैज बीन प्रिवेलिंग, और ऑन द अदर हैंड देयर इज ऑल्सो दैट आस्पेक्ट, द पॉजिटिव आस्पेक्ट, वेयर जनरेशन टू जनरेशंस देयर हैज बीन इल्यूमिन्ड हार्ट्स एंड इल्यूमिन्ड माइंड्स। ये दोनों ही पहलू हर दौर हर युग में रहे हैं, जहाँ पर अंधकार भी रहा है, जहाँ पर उजाला भी रहा है, जहाँ पर नेकियाँ भी रही हैं, जहाँ पर बदियाँ भी रही हैं, जहाँ पर प्रेम करुणा दया रहा है, लव कंपैशन टॉलरेंस रही है, वहाँ पर इनटॉलरेंस, वहाँ पर क्रूरता कठोरता निर्दयता, घृणा नफरत ये भी रहा है, विनम्रता भी रही है, अहम और अभिमान भी रहा है। तो ये दोनों ही पहलू रहे हैं और महापुरुष संत जन प्रेरित करते हैं कि हमने कदम बढ़ाने हैं जिस तरफ उजाला है, जिस तरफ प्यार है, जिस तरफ करुणा है, जिस तरफ दया है, उस तरफ हमने कदम बढ़ाने हैं। यानी कि उन भावों से युक्त होकर हमने अपने इस जीवन की यात्रा को तय करना है, इस जीवन के सफ़र को तय करना है, इस जीवन को हमने सजाना संवारना है, इसको श्रृंगार देना है। तो ये असली सजावट, ये हम ये कदम उठाएं इसको करने के लिए, जिससे ये मन भी सज जाए संवर जाए और इसी के कारण ये जीवन भी सज जाए संवर जाए। क्योंकि मन का संवरना जीवन का संवरना है। अगर मन ही नहीं संवरेगा तो फिर जीवन कैसे संवर सकता है? अगर ये मन में कुदूरत है, वैर है, अंधकार छाया हुआ है, तो फिर ये जीवन की चाल भी उसी पे आधारित होगी। ये अगर मन में रावण प्रवृत्ति बसी हुई है तो फिर कर्म भी उसी प्रकार से इंसान करता चला जाता है। तो महापुरुष कहते हैं कि मन को सजा लो, इस मन को संवार लो, इस मन को श्रृंगार दे दो, ऐसे जेवर ये पहना दो जिसके द्वारा इसकी शोभा बन जाए। हम शरीरों पे जेवर धारण करते हैं, हम बहुत इस प्रकार से एक जेवरों का इस्तेमाल करते हैं कि हमारी शोभा बने, हम सुंदर दिखें, हमारा अपीयरेंस बड़ा अट्रैक्टिव हो, बहुत अच्छा लगे। इस प्रकार से हम नाना प्रकार के साधनों का, लिबासों का, जेवरों का हम इस्तेमाल करते हैं। वो तो शरीर की सजावट है, उससे आप अच्छे लगने लगते हो, लेकिन जीवन की सजावट कुछ और है। जिस्म और जीवन में अंतर है, जिंदगी और शरीर में अंतर है। जिंदगी जिसको हम कहते हैं, वो वास्तविकता में एक अवस्था है जो एक हमारा रूप बिगाड़ भी सकती है और सवार भी सकती है, और वो मन के ऊपर आधारित है। मन हमें गिरा भी सकता है, हमारे जीवन को कलंकित कर सकता है, और मन ही हमें हमारी पूजा करवा सकता है। अगर मन राम के रंग में रंग जाए, अगर मन इस अल्लाह के साथ वाक्य ही जुड़ जाए, अगर मन गुरु पीर पैगंबरों और संतों की मति को अपना ले, उन भावों को अपना ले, फिर तो यही मन हमारे इस जीवन को सही दिशा देगा। यानी कि हमारा व्यवहारिक रूप एक सुंदर बन जाएगा। और यही मन अगर ना समझे तो इसने पहले भी गिराया है, हर युग में गिराया है, कंस को गिराया है, दुर्योधन को गिराया है, हरणाकश्यप को गिराया है, रावण को गिराया है, कितनों को गिराया है। जो मन नहीं समझा, जो मन नहीं संभला, जिस मन में ये उजाला नहीं हुआ, तो उसने जीवन को इस कदर पटक कर नीचे गिराया है। और दूसरी तरफ जिसका मन संभल गया, समझ गया, जिस मन में ये संतों वाले भाव स्थापित हो गए, उसका जीवन एक सुंदर बन गया। और जिसका जीवन सुंदर बन गया, उसने फिर सुंदर व्यवहार किए हैं। क्योंकि भाव सुंदर हो गए, फिर व्यवहार भी सुंदर हो गया। अगर भाव ही सुंदर नहीं तो सुंदर व्यवहार कैसे होंगे? अगर दुर्भावनाएं हैं, दुष्भावनाएं हैं, तो फिर शुद्ध एक चाल नहीं हो सकती है। चाल भी दूषित होगी अगर दुष्भावना है। अगर शुद्ध भावना है तो शुद्ध चाल होगी जीवन की। फिर हम सुंदर ही देने वाले बनेंगे सभी को, और सभी को राहत देने वाले हम बनेंगे। तो आज भी यहाँ पर महापुरुष भक्तजन वो यही पुकार पुकार कर कह रहे हैं, जो आज भी इस सत्संग में आपने वचन श्रवण किए, वो चाहे छोटे से बच्चों की रसना से, जुबान से, चाहे जवानों बुज़ुर्गों की ज़ुबान से, चाहे वो अंग्रेज़ी भाषा या हिंदी या पंजाबी या फिर तेलुगु तमिल मलयालम या कन्नड़ भाषा में या मराठी भाषा में या कहीं भोजपुरी भाषा में या फिर बंजारों वाली भाषा में, तो कोई सी भी भाषा हो, लेकिन महापुरुष संत जनों ने संदेश यही दिए हैं जो पहले भी धर्म ग्रंथों में गुरु पीर पैगंबरों और संतों महात्माओं के जो भाव थे और जो उन्होंने सबसे श्रेष्ठ माने थे, उसी का जिक्र आज भी किया गया है। इसीलिए कहते हैं कि लोग कहें ये गीत है ये तो ब्रह्म विचार, कि लोग कहें ये गीत है ये तो ब्रह्म विचार, ये तो बहुत उत्तम भाव हैं, इसकी कीमत है, इससे इसके ऊपर बहुत कुछ टिका हुआ है, ज़रूरत है कि तू इसकी कदर कर ले, तू इसको अपना ले, इसको अपने अंदर जाने दे। जैसे ये भी एक कहावत है, यू कैनॉट एंटर हेवन इफ़ यू डू नॉट लेट हेवन एंटर यू, कि आप अगर सोचते हो कि तुम्हारे एक जन्नत में वास हो जाएगा, तो कहते हैं कि हेवन एक अक्सर क्रिश्चियनिटी में इस टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता है, और यही कहा गया कि आप हेवन में जाना चाहते हो, लेकिन पहले लेट द हेवन बी विद इन यू, पहले इस हेवनली फीलिंग्स को तो आने दो, पहले वो पायस फीलिंग्स तो आने दो, पहले वो नेक नियत तो तुम्हारी बने, पहले तुम्हारे मन में ये भाव तो प्रेम वाले स्थापित हों। अगर तुम्हारे अंदर ही हेवन नहीं बसा तो तुम कौन से हेवन में बसने वाले हो, ये भूल जाओ। तो इसलिए महापुरुष अनेकों ढंगों से अनेकों तरीकों से ये बात जो है ये समझाने के ये प्रयास करते आए हैं, इस चाहना से कि कोई भी इंसान इससे वंचित ना रह जाए, हर इंसान अपना उद्धार करने वाला बने, अपना कल्याण करने वाला बने, एक सच्चाई को अपनाने वाला बने, इस सच के रंग में, इस नाम प्रेम भक्ति के रंग में रंगने वाला बन जाए, और ऐसा रंगदार जीवन इसका बन जाए जो रंग असल रंग है बेरंगे का। रंग तो चढ़े, लेकिन ये भी अचंभे की बात है, ये भी हैरानगी की बात है कि इधर रंग की बात हो रही है, जो सात रंगों की बात हो रही है, कहीं विपग्योर की बात हो रही है, कहीं पर एक रेनबो की बात हो रही है, वो अपने एक रूप में है, रंग है अनेकों, हरा पीला लाल नीला काला सफ़ेद, कितने रंग हैं, तो वो रंग हैं, वो भी मालिक की रचना। लेकिन यहाँ पर जिस रंग की बात हो रही है, जो नाम के रंग की बात हो रही है, तो ये रंग ऐसा है जो बेरंगे से है। एक बेरंगे का रंग चढ़ जाए, और इस बेरंगे से ही सारे रंग पैदा हुए हैं, तो इस बेरंगे के रंग में रंगना बहुत ज़रूरी है। अभी पीछे ये होली का त्यौहार भी मनाया गया, कितने कितने वो भी रंग हैं, और इस संसार में दुनिया में अनेकों रंग हमें देखने को मिलते हैं, अनेकों रूप हमें देखने को मिलते हैं, अनेकों संस्कृतियां हमें देखने को मिलते हैं, अनेकों ऐसे एक पहलू हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। तो महापुरुष कहते हैं कि उन तमाम पहलुओं और तमाम रंगों से सबसे श्रेष्ठ ये नाम का रंग, ये प्रेम का रंग, ये भक्ति का रंग, यही पहलू सबसे उत्तम पहलू है। दिस आस्पेक्ट ऑफ लाइफ इज ऑफ फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंस, इस प्रकार से इसकी विशेषता है, तो इसका एहसास करना बहुत ज़रूरी है, और महापुरुष एहसास ही कराते हैं, याद ही कराते हैं, ये गफलत की नींद से उठाते हैं, ये इंसान को जागृति प्रदान करते हैं। कोई सा भी युग, कोई सा भी दौर हो, संतों की यही देन रही है। ये नहीं कि संतों की एक युग में कुछ और देन थी और दूसरे युग में कोई और देन थी, या उनकी मान्यता बदल गई युगों के बदलने से, नहीं बदली, वो एक ही रही है। सूरज का काम जो सतयुग में था वो सूरज आज भी वही धर्म निभा रहा है। त्रेता में और द्वापर में भी सूर्य का यही काम था जो आज कर रहा है। जल पानी का जो धर्म है, जो पानी देन देता है, जल जो देन देता है इस धरती को, इंसानों को, ये जीव जंतुओं को, तो वो जल आज भी वही अपना धर्म निभा रहा है। आज भी जल अपनी देन उसी प्रकार से दिए चले जा रहा है। तो ये कुदरत के नियम जब युगों युगों से एक तरह के हो सकते हैं, तो फिर ये कैसे हमारे मन में ख्याल आ जाता है कि शायद युगों के और सदियों के बदलने से भक्त और भक्ति के मायने बदल जाते हैं, या भक्त की पहचान किसी और ढंग से होना शुरू हो जाती है। नहीं, ये असूल वही हैं, ये वही कायदे कानून हैं, ये वही एक जो महापुरुष संत जनों ने बताए हैं, वही एक असूल, वही पहचान ये युगों युगों से एक सरीका रही है। ये बदली नहीं है, ना स्थानों से, ना काल से, ना समय से, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। तो आज भी कलयुग में जीने वाले उनको ये बात समझनी है कि केवल यही बात ना कह दें कि जी आज तो घोर कलयुग है, बस इतनी बात करके अपना पल्ला छुड़ा लें और बदी के रास्ते पे चल निकलें। केवल ये कह के कि बस जी अब तो कल एक घोर कलयुग है, बस इतना कह के एक रीज़न बना लें कि हम विपरीत रास्ते पे चलते चले जाएं, हम संभले नहीं, हम अच्छाई से युक्त ना हों, हम मानवता इंसानियत की डगर पर चले नहीं, तो इंसान कितने कितने एक दलीलें और चतुराइयों और चालाकियों का सहारा लेकर ये उस मार्ग को छोड़ना नहीं चाहता है जो मार्ग पतन वाला मार्ग है, जो खाई गहरी में गिराने वाला मार्ग है, उसको छोड़ना नहीं चाहता है। अनेकों दलीलें दे देगा, अनेकों रीजनिंग, अनेकों एक ऐसी लॉजिक्स देगा ताकि मुझे ये इस सुंदर रास्ते पे चलना ना पड़े। कितने कितने बहाने ढूंढता है। तो महापुरुष संत जन कहते हैं कि वाकई ही एक कल्याण का मार्ग तो एक ही है, इस रास्ते पे चले बगैर कोई तेरी बात बनने वाली नहीं है, ये एक ही मार्ग है। जैसे वो पंजाबी में बहुत बरस पहले मिशन के ही कई कवि महापुरुष पुरातन बाबा अवतार सिंह जी के समय में भी, बाबा गुरबचन सिंह जी के समय में भी, तो वो अक्सर रचनाएं आज भी कवि लिख रहे हैं। तो एक पुराने कविता महापुरुषों की एक पंक्ति जो उन्होंने पंजाबी भाषा में कही कि जे डूबना है किते डूब जाओ, जे बचना है किनारा है। कि अगर डूबना है तो कहीं भी डूब जाओ, कहीं भी डूब जाओ, लेकिन अगर बचना है तो किनारा है। तो ये बचना, बचाव वाला किनारा एक सत्य परमात्मा, ईश्वर निराकार, ये संत प्रवृत्ति, ये संतों वाली मति, यही एक बचाव का साधन है। वरना तो गिरते ही जाते हैं, गिरावट की ओर ही जाते हैं, डूबते ही जाते हैं। तो महापुरुष संत जन इस भव सागर से भी पार उतारना चाहते हैं, ये गिरते हुए इंसान के म्यार को भी एक रोकना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इंसान का म्यार ऊंचा हो, ये इंसान की असल पहचान बने, ये सही एक जीवन की चाल चले, और ऐसी चाल चलते हुए ये आप भी आगे बढ़ें और औरों के लिए भी ये एक वरदान बनता चला जाए। तो इसीलिए ये उपकार करते हैं, इसीलिए ये परोपकारी हृदय, ये योगदान तन मन धन का दिए चले जाते हैं, बड़े से बड़े बलिदान दे देते हैं, और चाहना यही रहती है कि इंसान का भला हो जाए। ये इंसान एहसास नहीं करता है, इसलिए सारे ही डूबने के सामान इकट्ठे करता है। तो ये डूबता हुआ देखकर भी भक्तजन इनको पीड़ा होती है कि इंसान आखिर क्यों अपना नुकसान कर रहा है। इसलिए ये परोपकार करते चले जाते हैं कि तरवर सरवर संत जन चौथा बरसे में परोपकार के कारण चारों धारें दें, कि ये इसी तरह से ये अपने योगदान देते चले जाते हैं। जैसे वृक्ष वो फल देता है, छाया देता है, नदी हमारी प्यास बुझाती, हमारे खेतों को लहलहाती है, इस प्रकार से तरवर सरवर संत जन चौथा बरसे में परोपकार के कारण चारों धारें दें। तो ये संत महात्मा भक्त जन, वो चाहे कबीर जी हों, चाहे रविदास जी हों, चाहे पतन्ना जी वैमन्ना जी हों, चाहे वो बुल्ले शाह जी हों या मीराबाई हों, कितने भी नाम हम लेते चले जाएं, या गुरु पीर पैगंबर, चाहे भगवान राम, भगवान कृष्ण, चाहे हज़रत ईसा मसीह जी, हज़रत मोहम्मद साहब या श्री गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, तो कितने कितने पैगंबरों और संतों महात्माओं के रूप आते गए हैं समय समय के ऊपर। तो वो सब के मन में यही पीड़ा थी कि इंसान का बचाव हो जाए, ये आत्मा का बचाव हो जाए, ये आवागमन के बंधन से छुटकारा पाएं, ये एक संसार में एक ऐसे सुंदर रूप से युक्त होकर इस सफ़र को तय करें। ये उनके भाव थे, इसीलिए वो उपकार करते चले गए। और कितने एक कष्ट और दिक्कतों का और पीड़ा का भी उनको सामना करना पड़ा, कितने जुल्म और सितम उनको सहने पड़े, जो दुनिया के ऐसे शरा के लोगों ने, जो ऐसे लोग जो अज्ञानता में विचरण करने वाले, उन्होंने क्या काम किया। एक गुरु पीर वलियों पैगंबरों के ऊपर भी ऐसे जुल्म किए कि इंसान का दिल दहल सकता है, दहल जाता है, एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इतना जुल्म उनके ऊपर, जो केवल प्यार का पाठ पढ़ाते रहे, जो केवल बचाने में यकीन रखते थे, जो केवल बसाते ही चले गए, और उन्हीं के ऊपर इतने जुल्म, और ये भी इतनी विडंबना कि वही पैगंबरों जब वो इस संसार से रुखसत हो जाते हैं, फिर उनकी जय जयकार, फिर उनकी पूजा होती है, फिर उनको बहुत याद किया जाता है, फिर बहुत ऊंचे नारे लगाए जाते हैं। और जब होते हैं, जैसे अवतार वाणी में भी वचन आते हैं कि आए दीते कदर ना जानन दीवे बालन मणियाँ ते, कि जब होते हैं तब कदर नहीं है, और उसके बाद मणियों के ऊपर, समाधियों के ऊपर फिर दीपक जलाते हैं। जब होते हैं उस वक़्त कोई कदर नहीं, उस वक़्त तो उनको कुराइया कहते हैं, उस वक़्त तो उनको सूली पे लटकाते हैं, उस वक़्त तो बदसलूकी करते हैं, और बाद में तो इसी बात का ध्यान, कई बरस पहले दास के ध्यान में ये बात आई, और उसके बाद सैकड़ों दफ़ा उस मिसाल को सामने रखा है कि ठीक उसी तरह से है। जैसे किसी ने पूछा, व्हेन डज ए पेडेस्ट्रियन गेट्स प्रेफरेंस, कि एक पैदल चलने वाले को कब प्राथमिकता मिलती है, व्हेन डज ए पेडेस्ट्रियन गेट्स प्रेफरेंस, उसको कब पहल मिलती है। तो आगे से जवाब मिला, ही गेट्स प्रेफरेंस व्हेन ही इज इन द एम्बुलेंस इन एन इंजर्ड स्टेट, कि जब वो ज़ख्मी हो जाता है उसको एम्बुलेंस में डाल दिया जाता है, फिर रास्ता देते हैं, साइड हो जाओ, जाने दो एम्बुलेंस को, साइड में जाने दो। और जब वो पैदल चल रहा था तो उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उसको ज़ख्मी किया था, और बाद में एम्बुलेंस में पड़ा ज़ख्मी हालत में, तो रास्ता दो, ही शुड गेट प्रेफरेंस। एंड व्हेन ही वाज फाइन एट दैट टाइम You were all out to harm him. तो यही संतों महात्माओं, गुरु पीर पैगंबरों के साथ, सच्चाई पे चलने वालों के साथ, नेक नियत वालों के साथ, अंधकार वालों ने, अज्ञानता वालों ने, खुदगर्जी वालों ने ऐसे ही सलूक किए हैं। तो महापुरुष संत जन फिर भी ये अपना मार्ग नहीं छोड़ते हैं, ये अपना रास्ता नहीं छोड़ते हैं। चंदन का पेड़ शीतलता नहीं तजता है अगर उसके चारों तरफ अगर सांप जहरीले भी लिपट जाएं तो वो चंदन अपनी शीतलता नहीं छोड़ता है। इसी प्रकार से ये संत भी इतने कष्ट सहकर भी यही दर्द मन में लिए रखते हैं कि इंसान का बचाव हो जाए। ये नादानी में ऐसा कर रहे हैं, ये अज्ञानता के कारण ऐसा कर गुजर रहे हैं कि अपने अमोलक जन्म को नष्ट करते चले जा रहे हैं। तो ये दर्द मन में लिए हुए महात्मा गुरु पीर पैगंबर संत जन यही पुकार पुकार कर कह रहे हैं। तो आज हैदराबाद में ये जो संत समागम का आयोजन हुआ है सदर्न स्टेट्स का, तो ये इसी अभिप्राय से है, ये इसी कारण है। और जैसे कल भी दास ने जिक्र किया कि ये प्रांतीय समागमों की लड़ी चल रही है, भाषाएं बदलती जाती हैं। अभी दास ने वो सदर्न स्टेट्स में जैसे महापुरुष ये प्रेम से बोलो की बात करते हैं, और इससे पहले जहाँ जहाँ से चल कर आए हैं वहाँ पर प्रेम थी बोल जो, जहाँ गुजरात में ऐसे महापुरुष बोलते, और उससे पहले महाराष्ट्र में प्रेमा ने बोला, और उससे पहले नेपाल में जब गए तो वहाँ पर जी प्रेम बाटो भन्नस के प्रेम से बोलो प्यारो। तो इस प्रकार से ये भाषाएं बदलती जाती हैं, लेकिन महापुरुष संतों का पैगाम वो एक ही रहता है, और यही एक उनके योगदान रहते हैं। वो चाहे नेपाल हो, चाहे वो कोई भी मुल्क हो, हिंदुस्तान का कोई भी प्रांत हो। तो आज उन्हीं प्रांतीय समागमों की लड़ी में आज यहाँ ये हैदराबाद में आंध्र प्रदेश में ये समागम का आयोजन हुआ है। और ये भी आपने थोड़ी देर पहले श्रवण किया कि पहले तो केवल 14 तारीख का ही संडे का ही एक सत्संग का यहाँ पर सूचना दी गई, लेकिन फिर ऐसा ही ध्यान आया कि बहुत लंबा अरसा हो गया है यहाँ साउथ में समागम नहीं हुआ, और साथ ही साथ अभी कोई ज़्यादा समय नहीं मिल पा रहा कि सदर्न स्टेट्स में अन्य जगहों पर भिन्न भिन्न जगहों में जाया जा सके। तो इसलिए ऐसा ही ध्यान आया और फिर से सूचना दी गई कि अब 14 तारीख की बजाय अब 13 को भी समागम होगा। और इस प्रकार से ये 2 दिवसीय प्रांतीय संत समागम, जिसका कल से ही भरपूर आनंद लिया जा रहा है, और आप सभी तमाम इस साउथर्न स्टेट से चल कर आए हैं, और वैसे भी आंध्रा में जब ये आप सारे इस प्रकार से योगदान दे रहे हैं, सेवा दल के भी जहां योगदान दे रहे हैं, तो विशेषकर महाराष्ट्र भी, क्योंकि कहते हम तो पड़ोसी हैं और पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा। तो इस प्रकार से ये महाराष्ट्र वाले भी, इन्होंने भी सेवा दल और अन्य महापुरुषों ने भी योगदान दिए हैं, और बाकी भी स्थानों से नुमाइंदगी हुई है जो यहाँ चल कर आए हैं, और इस समागम की ये शोभा बनी है। और जितने पहले साउथ में समागम किए, आज ये समागम का रूप उससे कई गुना ज़्यादा विशाल रूप। तो दातार कृपा करें कि इसी प्रकार से ये मौके ये अवसर बनते रहें, ये संतों का मेला लगता रहे, और सारे ही भक्तजन एक आनंद प्राप्त करते चले जाएं, एक खुशियों भरा जीवन ये जीते चले जाएं, और ये सब के लिए भलाई की कामनाएं जहां कर रहे हैं, भलाई में भी करने में भी ये योगदान दे रहे हैं और देते चले जाएं। और इस तमाम यात्रा का ये अंतिम पड़ाव है हैदराबाद, क्योंकि जैसे दास ने जिक्र किया कि पहली 2 तारीख को दिल्ली से रवानगी हुई थी, उससे पहले 30-31 तारीख को ऋषिकेश में समागम था उत्तराखंड का, उत्तरांचल का, और फिर केवल 1 तारीख शाम रात बिताई दिल्ली में, और 2 तारीख दोपहर बाद मुंबई के लिए फ्लाइट थी, और फिर वहां पर 3 और 4 तारीख 2 बड़े समागम करने का मौका मिला, और फिर उसके बाद गुजरात का समागम, और फिर महाराष्ट्र के चंद स्थान, और फिर उसके बाद यहाँ पर हैदराबाद में ये संत समागम में पहुँचना हुआ। तो ये अंतिम पड़ाव है, और इसके बाद दिल्ली की रवानगी, और दिल्ली फिर आप सभी जानते हैं कि 24 तारीख को मानव एकता दिवस, जहां पर बाबा गुरबचन सिंह जी ने ये महान बलिदान दिया मानवता के लिए, इंसानियत के लिए। और बाबा गुरबचन सिंह जी के साथ भी इतने बरस राजमाता जी लगातार योगदान देते आए, और अभी भी 1980 से लेकर आज तक इसी सत्य के प्रचार में ये लगातार योगदान देते आ रहे हैं। और उन्होंने भी अपनी आशीर्वाद और शुभकामनाएं भेजी हैं, वो यहाँ नहीं पहुँच पाए, तो दातार कृपा करें कि इसी तरह से उनके योगदान मिलते रहें, गुरसिक्खी और गुरमत का रास्ता उनसे सीखते रहें सभी, और ये सभी अपना आनंदमय ढंग से सभी अपने इस जीवन की यात्रा को तय करते चले जाएं। तो दास मुबारक देता है तमाम प्रबंधक महापुरुषों को जिन्होंने ये सुंदर आयोजन किया है, केंद्र से भी या फिर यहाँ सेवा दल के अधिकारी या नौजवान और तमाम संगतें जो आप चल कर आए हैं, तो सभी मुबारकबाद के पात्र हैं। और सभी को दास मुबारकबाद देता है कि सब ने एक सुंदर स्वरूप यहाँ पर बनाया, और इस समय एग्जीबिशन ग्राउंड में जहाँ पर एक ऐसा स्वर्गमयी एक नज़ारा ये जो देखने को मिल रहा है, तो दातार कृपा करे कि ऐसे सुंदर नज़ारे ये स्थान स्थान पर देखने को मिले और सभी ये पैगाम को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाते चले जाएं। ये जो एक वननेस का, एकता का, एकत्व का ये जो मकसद मंतव है, इसको पूरा करने के लिए सभी योगदान देते चले जाएं, क्योंकि अंधकार बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। अभी जब बड़ौदा में जब गुजरात का समागम हुआ, तो 7 तारीख को जो मैराथन रेस, हाफ मैराथन रेस आयोजित की गई थी मिशन के द्वारा, जो हमारी संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन है उस के द्वारा ये जो आयोजन हुआ, तो उसमें हज़ारों की संख्या में महापुरुषों ने इसमें हिस्सा लिया, रन फॉर वननेस। तो वहाँ पर दास ने यही बात कही थी कि ये रन फॉर वननेस, ये इसलिए इसको हमने चुना है कि अब अंधकार इतना जितना फैला हुआ है, जितनी इंसान में गिरावट आती चली जा रही है, तो उसमें केवल आराम से चलने से बात नहीं बनेगी, ये तो रफ्तार पकड़नी होगी, भाग भाग कर इस सच्चाई के पैगाम को आगे से आगे पहुंचाना होगा। ये वननेस की भावना ये मनों में स्थापित करनी होगी, ताकि ये झगड़े, ये धर्मों के, मजहबों के, जातियों के, ये प्रांतीयवाद, ये सब रीजनलिज्म, ये जो कुछ भी हैं, ये सारे ही ये कारण मिट जाएं और वननेस में स्थापित हो जाएं, एक रूपता हो जाए। एक रूपता का मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं, एक यूनिटी के रूप में ये सारे एकत्व स्थापित करने वाले इस एक के साथ जुड़कर एकता के मार्ग पर, एक ही मार्ग, इंसानियत वाले मार्ग पर चल निकलें। इसी में सबका भला है, वरना ये मार्ग ना अपनाया तो फिर नुकसान ही नुकसान है। तो दास इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा। सात संगत जी धन्यवाद।